राधिका स्कूल चली आई थी। उसका खाली पीरियड था तो स्टाफ रूम में बैठी थी। आज तो उसका क्लास में भी मन नहीं लगा था। रह रहकर आंखों के आगे माधव की वो नाराजगी भरी निगाहें आ रही थीं और दिल बेचैनी से पहलू बदल रहा था, पर किसी करवट चैन न था। माधव का ख्याल था कि मन से जा ही नहीं रहा था। मन बहलाने के लिए उसने फ़ोन निकाला और ईयरफोन लगाकर गाने सुनने ही जा रही थी कि आहाना वहाँ आ गई। राधिका, अगर तुम फ्री हो तो कुछ बात करनी थी हमें तुमसे। हाँ, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, तुम कहो ना क्या बात करनी है। राधिका ने ईयरफोन और फ़ोन वापस रख दिया। जाने आहाना क्या कहने आई थी, चेहरे से कुछ नर्वस सी लग रही थी। राधिका, तुम हमारे छोटे भाई निशांत को तो जानती ही हो। हाँ, जानती भी हूँ और मिली भी हूँ। तुम्हारी तरह वो भी दिल का साफ और एक अच्छा इंसान है। कुछ दिन पहले उसने अर्पिता की मदद भी की थी। राधिका ने सहजता से मुस्कुराते हुए हामी भर दी। निशांत से वो काफ़ी इम्प्रेस लग रही थी। राधिका का जवाब सुनकर आहाना की नर्वसनेस कुछ कम हुई। निशांत अर्पिता को पसंद करता है। राधिका बुरी तरह चौंक गई, एक झटका सा लगा उसे। निशांत, तुम्हारा भाई निशांत, अर्पिता, मतलब मेरी छोटी बहन अप्पू को पसंद करता है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बात थी तो हैरानी लाजमी ही थी। आहाना भी सामान्य थी। उसने राधिका के शक को दूर करते हुए आगे कहना शुरू किया। हाँ, हमारा भाई निशांत तुम्हारी छोटी बहन अर्पिता को पसंद करता है। हमें भी कल ही पता चला कि वो अर्पिता को कानपुर में हुई पहली मुलाकात से ही पसंद करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। जब हमें पता चला तो हम भी हैरान थे और कुछ ऐसा ही रिएक्शन था हमारा भी। पर जब हमने उसकी पूरी बात सुनी और उसकी आंखों में अर्पिता के लिए सच्चे जज्बात देखे तो समझ आया कि वो अर्पिता को लेकर बहुत सीरियस है, कोई दिल्लगी नहीं कर रहा। हमें तो अर्पिता पहले से ही पसंद है। अगर इतनी प्यारी गुड़िया हमारे भाई की दुल्हन बनकर हमारे घर आती है तो हमें बेहद खुशी होगी। हमारे परिवार को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं होगा, क्योंकि अर्पिता उन चंद दिनों में ही सबका दिल जीत चुकी है। हालांकि अभी हमने अपने घर में किसी से इस बारे में बात नहीं की है। सोचा पहले तुमसे तुम्हारी राय जान ले, अर्पिता के मन की बात पता चल जाए और अगर अंकल हाँ कहें तो हम सबसे इस बारे में बात करेंगे। अभी सब मामा जी के यहाँ आए हुए हैं शादी में, तो दोनों परिवार एक दूसरे से मिल भी लेंगे और अर्पिता और निशांत की भी मुलाकात हो जाएगी। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? राधिका हैरान थी। इस बात की बिल्कुल आशंका ही नहीं थी उसे। कुछ वक्त तो उसे इस बात पर विश्वास करने में लग गया। गहराई से आहाना की कही बातों के बारे में सोचने के बाद उसने गंभीरता से जवाब दिया। मुझे तो इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। निशांत एक अच्छा और शरीफ लड़का है, तुम्हारा भाई है, मैं उससे मिल चुकी हूँ। तुम्हारी फैमिली भी बहुत अच्छी है। अगर अर्पिता का रिश्ता निशांत से जुड़ता है और वो तुम्हारे घर जाती है तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। मैं उसकी ओर से निश्चिंत हो जाऊंगी, पर ये अप्पू की ज़िंदगी का फ़ैसला है, उससे पूछे बिना मैं कुछ भी नहीं कह सकती। तो मैं आज घर जाकर अप्पू और पापा से इस बारे में बात करती हूँ, फिर तुम्हें बता दूंगी जो भी होगा। राधिका का जवाब सुनकर आहाना ने मुस्कुराकर हामी भर दी और दोनों दोस्त मिलकर बातें करने लगी। आहाना के आने का फ़ायदा हुआ, राधिका के मन से माधव का ख्याल कुछ देर के लिए ही सही पर निकल गया। शाम का वक्त था। एक तरफ राधिका बैठी थी तो उसके सामने आशुतोष जी और अर्पिता बैठी थी। राधिका ने सारी बात उन्हें बता दी थी। आशुतोष जी विचारों में खोए थे और मुंह फुलाए बैठी अर्पिता से तो इतना भी सब्र न हुआ कि उनकी बात ही सुन ले। वो तो फट से बोल पड़ी, दी मुझे शादी नहीं करनी। राधिका ने चौंकते हुए उसे देखा। क्यों शादी नहीं करनी? निशांत इतना अच्छा और समझदार लड़का है, पुलिस में है, कानपुर का SP है और तुम्हें तो यूनिफॉर्म वाले लड़के कितने पसंद हैं। पसंद है तो मैं क्या उनसे ब्याह रचाती फिरूं? होंगे वो SP-वेस्पी, वो तो मुझसे बड़े हैं और मैं अभी बहुत छोटी हूँ। अप्पू ने अतरंगी मुंह बनाया तो राधिका प्यार से उसे समझाने लगी। वो बहुत अच्छा है अप्पू और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो मिली है ना सबसे? फिर भी मुझे शादी नहीं करनी। अप्पू ने मुंह ऐठा और अब की बार राधिका आंखें चढ़ाते हुए उसे घूरने लगी। क्यों नहीं करनी? मैं आपको और पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अर्पिता ने बारी बारी दोनों को देखा और मासूम उदास सूरत बनाकर बैठ गई। उसका जवाब सुनकर राधिका ने अपना सर पकड़ लिया और परेशान सी बोली, ये क्या बात हुई? जो है बस यही बात है। अप्पू तुनक गई। उसकी बेफिजूल की जिद देखकर राधिका की परेशान निगाहें अब आशुतोष जी की ओर घूम गई। पापा, देख लो कैसे जिद कर रही है। इतना अच्छा रिश्ता बार बार आता है जो ये अपनी नादानी और बेवकूफ़ी में इसे ठुकराना चाहती है। लड़का जाना पहचाना है, परिवार इतना अच्छा है, घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आया है और ये लड़की है कि मानने को तैयार ही नहीं। अब आप ही समझाइए इसे कि ऐसी बेवकूफ़ी ना करे। नैया की पतवार अब आशुतोष जी के हाथ में थी। वो कुछ कहते उससे पहले ही अप्पू उनके सीने से लिपट गई। पापा, मैं नहीं करूंगी इतनी जल्दी शादी। अभी तो मैं कितनी छोटी हूँ, मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। मैं नहीं जाऊंगी इतनी जल्दी आप दोनों को छोड़कर। अप्पू की आवाज़ रुंध गई थी। राधिका को उसे देखकर अपना वक्त याद आ गया और उसका गुस्सा एकदम से शांत हो गया, जबकि आशुतोष जी भी कुछ भावुक से हो गए। उन्होंने खुद को संभाला और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। बेटा, अभी शादी कहाँ कर रहे हैं हम आपकी? आपकी दीदी तो बस इतना कह रही है कि लड़का देखा सुना है, परिवार भला है और सामने से रिश्ता आया है तो एक बार मिल लेना चाहिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। बुला लेते हैं उन्हें घर, हम उनके परिवार से मिल लेंगे और आप लड़के से मिलकर बात कर दीजिएगा। उसके बाद जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़रूरी आपकी खुशी है। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। एक बार निशान से मिल लो, बात कर लो, उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा हमें मंजूर होगा। जिंदगी तो तुम्हें बितानी है ना, तो किसके साथ बितानी है ये फैसला भी तुम ही लोगी। अप्पू मुंह फुलाकर बैठ गई। दोनों बातें बेटी ने मिलकर उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा जो लिया था, और अब उसके मन में निशांत के लिए गुस्सा जन्म ले लेता था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। सहगल निवास, ए जीजू के लाडले, इधर तो आओ जरा। अंतरा ने निशांत के कान पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। क्या करती हो यार दी, दर्द हो रहा है। निशान बाबू दर्द से बिलबिलाए और अपनी चंडालन बहन से अपना कान छुड़ाने लगे, पर अंतरा ने उसके कान को और कसकर पकड़कर मरोड़ दिया। बच्चू, ये सजा है तुम्हारे कर्मों की, चुपचाप भुगत लो, नहीं तो अभी तो बस कान ही ऐठा है। अगर अंतरा गिरी पर आए तो टूटे फूटे नजर आओगे। अंतरा ने दांत पीसते हुए उसे धमकाया। निशांत ने अब रोनी सी सूरत बनाकर बेचारगी से सामने खड़े अन्वय को देखा तो उसने तो अपने हाथ ही खड़े कर दिए। सॉरी यार, पर तुम्हारी बहन से तो तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। पता चल तुम तो बच गए, पर रात भर वो मेरी सुताई कर रही है। अपने बेटे के सामने अपनी इज्जत का कचरा नहीं करवाना मुझे, और न अपनी प्यारी बीवी के गुस्से का शिकार बनना है, तो तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लो। निशांत पहले तो आंखों की पुतलियां फैलाए अचंभित सा उसे देखता रहा, फिर मुंह बिचकाते हुए नाराजगी से बोला, दैट्स नॉट फेयर जीजू। ओ फेयर के बच्चे, अपने जीजू से अपनी सिफारिश लगाना बंद कर, क्योंकि वो तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। और इधर ध्यान लगा, अंतरा ने खींचते हुए फिर उसके कान को मरोड़ दिया। हल्की सी सिसकी के साथ निशांत ने उसे देखा और बेचारी सी सूरत बना ली। आखिर अंतरा को अपने छोटे भाई पर तरस आ ही गया, और जैसे ही उसने उसके कान को छोड़ा, निशांत अपनी हथेली से अपने कान को सहलाने लगा, जो टमाटर जैसे लाल हो गया था।
हाँ तो एसपी साहब, अब आप हमसे बातें भी छुपाने लगे हैं, मतलब प्यार के पेंचे लड़ाए जा रहे हैं, और हमें तुम्हारी अपनी सगी बहन को ही कोई खबर नहीं। अंतरा पेनी निगाहों से उसे घूरने लगी। उसकी बात सुनकर निशांत ने तुनकते हुए कहा, प्यार के पेंचे नहीं लड़ाए जा रहे थे, बस लड़की पसंद आ गई थी और सब कुछ वन साइडेड था। हाँ तो वन साइडेड ही सही था तो, और तुमने अपने लिए बीवी पसंद कर ली, हमारी भाभी चुन ली, और हमें खबर ही नहीं। ये तो घोर नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। नौटंकीबाज अंतरा आज निशांत की क्लास लगाने के फुल मूड में थी, और बेचारा निशांत बदकिस्मती से उसके चंगुल में फंस गया था। और दुख की बात तो ये थी कि अंतरा के अत्याचार से बचाने वाला यहाँ कोई नहीं था। दी यार, कोई चुना बुना नहीं था, बस पसंद आ गई थी, और सबको भी नहीं बताया था, क्योंकि पहले उसके लायक बनना चाहता था, उसका दिल जीतना चाहता था, उसके बाद सबको बताना चाहता था। अरे वाह, इतनी लंबी प्लानिंग कर रखी थी तुमने। अंतरा ने ताज्जुब से आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा, पर इससे पहले कि वो फिर से निशांत पर भड़कती, अन्वय उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से उसे समझाने लगा। अंतरा रहने दो ना यार, मैंने भी तुम्हारी हाँ से पहले किसी को कुछ नहीं बताया था। निशांत ने भी सोचा होगा कि पहले कन्फर्म हो जाए कि अर्पिता ही उसकी लाइफ में आएगी, उसके बाद सबको बताएगा। अंतरा जो अब तक निशांत को घूर रही थी, अब तीखी निगाहों से अन्वय को घूरने लगी और उसका हाथ झटक दिया। तुम तो कुछ बोलो ही मत, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो मुंह बंद रखो अपना और कल्टी मार लो यहाँ से। आज मेरे और मेरे भाई के बीच जो आएगा, मैं उसका काम तमाम कर दूंगी। अंतरा ने गले पर उंगली से ऐसे इशारा किया जैसे गला काटने की बात कर रही हो, और उसकी धमकी सुनकर अन्वय चुपचाप पीछे को खिसक लिया। अंतरा ने अब सारा ध्यान निशांत पर लगा दिया। हाँ तो अपने जीजा के लंगोटिए यार, हमें बताने के लिए तुम्हें लड़की की हाँ का इंतजार था, और अपने जीजू को मुंह फाड़कर सब बता दिया। लो, अब आई थी असली बात जुबान पर। मैडम तो इसलिए गुस्सा थी कि उनके क्राइम पार्टनर ने बात उनसे छुपाई, पर उनके प्यारे पतिदेव को बता दी। निशांत ने तुरंत ही हड़बड़ाते हुए सफाई पेश की, मैंने उन्हें भी पहले कुछ नहीं बताया था दी, वो तो उस रात अर्पिता को बचाते हुए चोट लग गई थी, जीजू ने पूछा तो अर्पिता का नाम लिया और वो बाकी सब खुद ही समझ गए, और अन्वय जीजू भी उनके साथ थे तो उन्हें भी पता चल गया, और मेरी पूरी प्लानिंग खराब हो गई। निशांत ने इतने अफसोस से कहा कि अंतरा को भी उस पर दया आ गई। चलो इसके लिए तुम्हें माफ किया, क्योंकि अर्पिता है बड़ी प्यारी और मुझे भी पसंद है, मिली तो नहीं हूँ पर देखने में ही क्यूट सी है, पर मेरे सुनने में आया है कि अर्पिता मेरी डुप्लीकेट है, उसके कारनामों के बड़े किस्से सुने हैं मैंने जीजी से, निभा लोगे उसके साथ सारी जिंदगी? अन्वय जीजू नहीं निभा रहे आपके साथ? निशांत ने पलटकर उसी से सवाल कर लिया, और अंतरा को जवाब मिल चुका था। जीजू भक्त को देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और घूरकर अन्वय की देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जाओ फिर शौक से सूली पर लटको, अंतरा ने खींचते हुए कहा और वहां से उठकर चली गई। अब जाकर निशांत की जान में जान आई, और अन्वय की जान तो अंतरा अपने साथ ही ले गई। जाते जाते उसके पैर पर पैर रखकर इतनी जोर से मसला कि बेचारे की चीख निकल गई। टू बी कंटिन्यूड।